अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है हादसा।
होली का दिन था। अबीर गुलाल से समस्त वातावरण रंगीन हो रहा था। मस्ती में झूमते पुरुषों की टोलियां हाथ में गुलाल और रंग भरी पिचकारियां लिए एक दूसरे पर रंग डाल डाल कर खिलखिला रहे थे। कुछ ग्रामीण ढोलक बजाकर भाग के गीत अपनी बुलंद तथा सुरीली आवाज में गा रहे थे। छोटे बड़े का भेदभाव मिटा हुआ था। कुछ तो बूढ़ों पर भी रंग की बौछार कर रहे थे और वे अपने पोफले मुंह पर मुस्कुराहट बिखेर रहे थे। बच्चों की अपनी अलग टोली बनी हुई थी। स्त्रियों का जमघट किसी एक सहेली के घर लगा था जहां वे भाग के गीतों पर नाच रही थीं। ऐसे रंगीन वातावरण में सभी को अपनी नई पड़ोसन श्रीमती श्वेता की अनुपस्थिति खटक रही थी। सभी को आश्चर्य था कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। श्रीमती श्वेता को इस कॉलोनी में आए कुछ ही महीने हुए थे। उनका जन्म बरेली के कुलीन खत्री परिवार में हुआ था। खत्राणी तो 20वीं स्त्रियों के बीच से पहचानी जा सकती हैं और वो भी श्वेता जैसी युवती। वो तो लाखों में एक थी। जब से इस कॉलोनी में आई तभी से स्त्री समाज में तहलका मच गया था। जिधर से निकल जाती लोग मुंह बाय निहारते रह जाते। सूरत के साथ साथ अगर सीरत भी हो तो क्या कहना। श्रीमती श्वेता में दोनों गुण विद्यमान थे। उन्हें अपनी सुंदरता पर कभी अभिमान नहीं हुआ। इसी कारण स्त्रियां उनसे ईर्ष्या नहीं करती थीं। कोई भी उत्सव होता सबसे पहले उन्हीं को बुलाया जाता था और जब वो अपनी सुरीली आवाज में गाते हुए नृत्य करती तो समा बन जाता था। वो सुशिक्षिता तथा नृत्य गान में अत्यंत कुशल थीं। उन्होंने नृत्य तथा संगीत में डिग्रियां ली थीं। होली के मौके पर उनका इतनी देर तक न आना सभी को खटक रहा था। उनके बिना संगीत तथा नृत्य जम ही नहीं रहा था। सभी ने योजना बनाई कि क्यों ना उन्हीं के घर धावा बोला जाए। हाथ में रंग से भरी पिचकारियां और अबीर लेकर वे सब उनके घर पहुंच गईं। दरवाजा बंद था। सभी ने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। इतने में नौकर ने दरवाजा खोलकर कहा, बीवी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो होली नहीं खेलेंगी। वे सभी हंसती हुई बोली, बीमारी का बहाना बनाकर यह हमें बुद्धू बनाना चाहती है, पर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आज तो अबीर तथा रंग से उन्हें इतना सराबोर कर देंगे कि वो भी याद रखेंगी। सभी धड़धड़ाती हुई उनके कमरे में पहुंच गईं। अबीर तथा रंग से भरी पिचकारियां देखकर श्वेता का मुंह सफेद पड़ गया। वह अपलक नेत्रों से उनको निहारती रहीं, फिर जोर से चीख मारकर बेहोश हो गईं। सभी स्त्रियां आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह ताकने लगीं। सभी चकित थीं कि अभी तो हमने अबीर या रंग की पिचकारी का प्रयोग ही नहीं किया, फिर ऐसा क्या हो गया। सभी घबराकर उनकी सेवा में जुट गईं। कोई पानी के छींटे डाल रही थी, कोई हथेली सहला रही थी। काफी देर हो चुकी थी पर श्वेता की बेहोशी नहीं टूटी। उन्होंने नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेज दिया। नौकर भागा हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसे मिस्टर सोमेश मिल गए। वो उन्हें देखते ही बोला, साहब जल्दी चलिए, बीवी जी की हालत ठीक नहीं है, बहुत देर से बेहोश पड़ी हैं। सोमेश घबराए हुए घर पहुंचे। वहां रंग तथा अबीर से नहाई स्त्रियों के हाथों में अबीर तथा रंग की पिचकारियां देखकर वे समझ गए। वे बोले, आप घबराइए नहीं, अबीर तथा रंग की पिचकारियां हटा दीजिए। कृपा करके अगर आप सब इस समय चली जाएं तो अच्छा होगा, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। शाम आएगी तो आप इन्हें नित्य की भांति सामान्य पाएंगी। इसी अबीर गुलाल के कारण इनके जीवन में एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना घट गई थी। इसी कारण जब भी ये रंग गुलाल अबीर इत्यादि देखती हैं तो इन्हें वो हादसा याद आ जाता है और डर के मारे ये अपना संतुलन खोकर बेहोश हो जाती हैं। होश में आने पर जब मैं इन्हें समझाता हूँ तब इन्हें राहत मिलती है। आज श्वेता के कारण आप सबकी होली फीकी पड़ गई, इसका मुझे बहुत दुख है। मैं अपनी तथा श्वेता की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप सब खुले मन से होली खेलिए। श्वेता के ऐसे भाग्य कहाँ जो इस खुशी में आपका साथ दे। कभी वो भी होली खेलती थी, ऐसी होली जो लोगों को गुदगुदा देती थी। होली के दिन वो ऐसे मज़ेदार चुटकुले सुनाती थी कि हंसते हंसते लोगों के पेट में बल पड़ जाते थे। कई दिन पहले से वो मिठाइयाँ बनाने में जुट जाती थी। अबीर गुलाल तथा रंग की मत पूछिए, वो तो इतना मंगाती थी कि 4 दिन तक होली खेली जा सकती थी। हम भिलाई में थे, हमारी नई नई शादी हुई थी, बस वहीं ये दुर्घटना घटी और तब से इन्हें ये बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। सभी स्त्रियों के मन में उत्सुकता थी कि आखिर वो कैसी दुर्घटना थी, पर मिस्टर सोमेश के मुंह से लगता था कि वे इससे आगे नहीं बताना चाहते। सभी स्त्रियां मायूस होकर लौट आईं, पर रास्ते भर वे एक दूसरे से कहती रहीं, इसमें जरूर कोई राज है, वरना रंग देखते ही अच्छी भली श्वेता क्यों बेहोश हो गई। मिस्टर सोमेश श्वेता के कान के पास जाकर बड़े प्यार से बोले, श्वेता, मैं सोमेश हूं। यहां कोई गुलाल अबीर इत्यादि नहीं है और ना ही कोई स्त्री है। तुम निर्भय होकर आंखें खोलो। उन्होंने पानी के छींटे उनके मुंह पर मारे। सोमेश की आवाज सुनते ही श्वेता में चेतना का संचार हुआ। उन्होंने डरते डरते आंखें खोली। वो कांपती हुई उठी और सोमेश से लिपट कर बोली, सोमेश मुझे बचा लो। सोमेश ने प्यार से उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, श्वेता, यहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? श्वेता कांपती आवाज में बोली, अगर वे स्त्रियां फिर से आ गईं तो क्या होगा? मेरी पहले वाली हालत तो नहीं होगी ना? सोमेश उसे दिलासा देते हुए बोला, श्वेता, यहाँ कोई नहीं आ सकता। देखो, मैंने दरवाजे पर ताला लगा दिया है। अब तुम बेफिक्र होकर उठो, यहाँ केवल हम दोनों ही हैं। श्वेता उठकर बैठ गई। अभी वो सहमी सहमी लग रही थी। उसका ध्यान बटाने के ख्याल से सोमेश बोले, श्वेता, बड़ी भूख लगी है, कुछ चाय वाय का जुगाड़ तो करो। और वो तुम्हारी मिठाइयाँ कहाँ हैं? पहले अपने देवता पति का भोग लगवा कर तभी सबको बांटना। धीरे धीरे श्वेता के मुंह से घबराहट के चिन्ह लोप होने लगे। थोड़ी देर में ही वो सामान्य हो गई। वो बड़े उत्साह से उठी और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। सोमेश भी वहीं खड़े होकर उनसे इधर उधर की बातें करके उनका ध्यान दूसरी तरफ बटाने लगे। श्वेता ने ढेर सी मिठाइयां तथा नमकीन चाय के संग टेबल पर सजाकर कहा, देखो पेटू राम, जितना खाना हो जी भर के खाओ, पर इतना मत खा लेना कि बाथरूम में ही बैठे रहो। फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सोमेश ने श्वेता की सहेलियों से कह रखा था कि वे शाम को जरूर आए, उनका स्वागत है, पर अबीर गुलाल लेकर ना आए तो बड़ी कृपा होगी, आपको देखकर श्वेता खुश हो जाएगी। शाम को बड़े उत्साह से श्वेता ने नई साड़ी तथा हल्के जेवर पहने। उनके चेहरे पर सिवा बिंदी के कोई सौंदर्य प्रसाधन ना था, उसी में उनका मुंह दमक रहा था। उसने प्लेटों में मिठाई तथा नमकीन सजाकर रख दिए। सोमेश भी अपने सफेद कुर्ता पैजामा में खूब जम रहे थे। ये खबर आग के समान फैल गई थी कि मिस्टर सोमेश के घर अबीर गुलाल लेकर नहीं जाना है। धीरे धीरे मिस्टर सोमेश के घर स्त्रियों तथा पुरुषों का जमघट हो गया। सुबह श्वेता की तबीयत खराब देखकर जो स्त्रियां लौट आई थीं, उनके संग और भी बहुत सी स्त्रियां उनकी तबीयत पूछने चली आईं। वहां पहुंचने पर जब उन्होंने श्वेता को पहले के समान सभी से हंसी मजाक करते पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। बीमारी का लेश मात्र भी चिन्ह उनके मुंह पर ना था। दो टोलियां बन गईं, एक तरफ स्त्रियां थीं तो दूसरी तरफ पुरुष। हर एक स्त्री पुरुष को कुछ ना कुछ बोलता था, गाना, कविता, चुटकुला या अपने पुराने संस्मरण। सबसे पहले स्त्रियों ने मिलकर होली के गीत गाने शुरू किए। वे गाती थीं, फिर उसी की नकल पुरुष समुदाय करता था। पुरुषों ने बाजा तथा तबला संभाला था तो स्त्रियों ने ढोलक। काफी देर तक प्रोग्राम चलता रहा। फिर कविता पाठ का दौर शुरू हुआ। श्वेता ने एक से एक बढ़कर चुटकुले सुनाए, जिन्हें सुनकर लोगों के पेट में बल पड़ गए। सोमेश के मित्रों तथा अपनी सहेलियों के आग्रह पर उन्होंने होली के कई गीत अपनी सुरीली आवाज में गाए। वो चारों तरफ चहकती फिर रही थीं। श्वेता को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि सुबह उसकी हालत खराब रही होगी। श्वेता का मधुर संगीत, सौंदर्य तथा हंसमुख स्वभाव देखकर पुरुष समाज में ईर्ष्या की लहर सी दौड़ गई। सोमेश के भाग्य को देखकर सभी मनी मन कुढ़ रहे थे, पर हर एक के मन में खलबली मची थी कि सुबह अबीर गुलाल देखकर श्वेता की गंभीर हालत क्यों हो रही थी। एकाद ने इशारा भी किया पर सोमेश टाल गए। सोमेश तथा श्वेता ने अपने मेहमानों की खूब खातिर की, सभी संतुष्ट होकर विदा हुए। पर एक बात उनके मन में खटकती रही कि सोमेश की पत्नी श्वेता के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे वो अब तक भुला नहीं पाई है। श्वेता की एक अभिन्न सहेली थी अनुराधा। अनुराधा ने अपने जीवन की कोई भी घटना श्वेता से नहीं छिपाई थी। वो उनकी सहेली न होकर बहन के समान थी। अनुराधा को भी आश्चर्य था कि श्वेता को वो सब कुछ बता देती है, पर उसने अपने जीवन की इतनी गोपनीय बात उससे क्यों छिपा रखी थी। वो अवसर की तलाश में थी। दो तीन दिन बाद ही अनुराधा श्वेता के घर पहुंच गई। मौका देखकर वो बोली, श्वेता, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छिपाई, पर तुमने इतना बड़ा राज मुझसे क्यों छिपा कर रखा, इसका मुझे आश्चर्य भी है और दुख भी। श्वेता ने कहा, अन्नू, अपने उन दूर दिनों की कहानी सुनाने से मेरे घाव ताज़ा हो जाते हैं। एक एक घटना चलचित्र की भांति मेरे मानस पटल पर उभर आती है। अब तक मैं उस हादसे को भूल नहीं पाई हूँ। तुम सोचती हो मैं तुमसे दुराव करती हूँ? नहीं अन्नू, ये बात नहीं है। मैं उस हादसे को याद करके थर्रा उठती हूँ। अनुराधा ने कहा, श्वेता, अपने अभिन्न से कहने से दुख बट जाता है। तुम विश्वास रखो कि तुम्हारा ये राज राज ही रहेगा। श्वेता ने कहा, तुम्हें तो ज्ञात ही है कि यहाँ आने से पहले हम भिलाई में थे। मेरे पति सोमेश वहाँ इंजीनियर थे। मेरी नई नई शादी हुई थी। लोग कहते थे कि मैं अतीव सुंदरी हूँ। इतनी सुंदर पति पत्नी की जोड़ी बिरले ही देखने को मिलती है। पर विश्वास मानो अनु, हम दोनों को ही अपने रूप या गुणों का लेश मात्र भी अभिमान नहीं था। हमारी कंपनी का एक बहुत शानदार क्लब था। मैं जब पहली बार क्लब पहुंची तो सभी मुझे ऐसे घूरने लगे जैसे हम कोई अजूबा चीज हों। मैंने निरीह दृष्टि से सोमेश की तरफ ताका। उन्होंने मेरा हाथ दबाकर मुझे ढांढस दिया। थोड़ी देर में ही मेरे कानों में लोगों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या छांट कर बीवी लाया है, देखकर आंखें तर हो गई हैं। फिर ईर्ष्याजनित नेत्रों से लोगों ने सोमेश को निहारा। उनकी ऐसी बातें सुनकर मैं लज्जा के मारे गड़ गई। मैं एक शालीन खानदान से आई थी, इसी कारण मुझे ये फप्तियां जरा भी नहीं भाई। पर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। सोमेश ने सभी से मेरा परिचय करवाया। मैंने बड़ी शालीनता से सबको नमस्कार किया। यकायक सोमेश ने धीरे से मेरा हाथ दबाकर कहा, मेरे बॉस आ रहे हैं, इनसे ठीक से मिलना। सोमेश ने आगे बढ़कर एक काले स्थूल काय व्यक्ति से मेरा परिचय कराया। वे थे मिस्टर गोयल। मैंने बड़ी नम्रता से उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने एक बार प्रशंसा की दृष्टि से मेरी तरफ निहार कर अपना हाथ आगे बढ़ाया। मन ना होते हुए भी मुझे उनसे हाथ मिलाना पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे वे मेरा हाथ छोड़ना ही नहीं चाहते थे। पर मैंने बड़ी शीघ्रता से अपना हाथ छुड़ा लिया। जिस दृष्टि से वे मुझे ताक रहे थे वो मुझे अच्छी नहीं लगी। पर वे सोमेश के बॉस थे, इसी कारण न चाहकर भी मुझे मुस्कुराना पड़ा। मिस्टर गोयल सोमेश के प्रति बड़े कृपालु थे। कभी कभी वो स्वयं ही उसे छुट्टी देकर कहते, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, आज हमारी तरफ से तुम्हें छुट्टी है। उनके इस व्यवहार से सोमेश गदगद हो जाते। मैं कुछ कह भी ना पाती थी क्योंकि मिस्टर गोयल का व्यवहार मेरे प्रति भी बड़ा शालीन था। पर उनकी आंखों के भावों को मैं पढ़ रही थी। वासना की दृष्टि को औरत बहुत जल्द पहचान जाती है। एक दिन सोमेश बोले, श्वेता, मिस्टर गोयल और उनकी पत्नी को खाने पर बुलाना चाहिए, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने उत्तर दिया, ठीक है, उनसे समय निश्चित कर लो, मैं सब तैयारी कर लूंगी। नियत समय पर मिस्टर गोयल अकेले ही आए। मैंने बड़ी नम्रता से पूछा, गोयल साहब, श्रीमती गोयल नहीं आई? उन्होंने उत्तर दिया, आज मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण वो ना आ सकी। फिर हंसकर बोले, क्या मेरे अकेले आने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई? मैंने अटकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे तो अहो भाग्य हैं जो आप हमारे घर आए हैं। गोयल साहब ने अपने स्थूल शरीर के अनुपात से डट कर खाया। भोजन की उन्होंने इतनी तारीफ की कि हम दोनों ही फूले ना समाए। चलते समय मिस्टर गोयल ने एक बार अनुराग भरी दृष्टि से मेरी तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर सोमेश, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं जो आपको सर्वगुण संपन्न पत्नी मिली। इनकी सीरत तथा सूरत दोनों ही कमाल की हैं। सोमेश ने कृतज्ञता से मिस्टर गोयल की तरफ देखते हुए कहा, सर, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इनकी बड़ाई कर रहे हैं। हम दोनों ही उन्हें गाड़ी तक पहुंचाने गए। लौटकर सोमेश बोले, श्वेता, मिस्टर गोयल मुझसे बहुत प्रसन्न है, अब शीघ्र ही मेरी पदोन्नति होने की संभावना है। वैसे श्वेता, आज का खाना तुमने वास्तव में बहुत अच्छा बनाया था। हफ्ते भर बाद ही मिस्टर गोयल ने हम दोनों को खाने पर बुलाया। उस दिन उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, नौकरों ने खाना बनाया था। मेरी तरफ देखते हुए मिस्टर गोयल बोले, श्वेता जी, आपके हाथ का पकाया स्वादिष्ट भोजन का स्वाद अभी तक भूला नहीं हूं मैं। ऐसा खाना कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए, वैसा खाना तो आपको यहाँ मिलेगा नहीं। बस यही उल्टा सीधा खाकर आपको संतोष करना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, गोयल साहब, आप तो झूठ मूठ कर बढ़ा चढ़ा कर मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं तो खाना पकाने में अनाड़ी हूँ, मेरी माताजी हमेशा मुझे डांटती रहती हैं। खाने के बाद जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो, वे सोमेश से बोले, मिस्टर सोमेश, अगर आपको कष्ट ना हो तो एक पत्र मिस्टर जावेरी को भेजना है। पत्र बहुत जरूरी तथा गोपनीय है। मुझे किसी दूसरे पर विश्वास नहीं है, इसीलिए आपको कष्ट दे रहा हूँ। इस बीच आपकी कीमती धरोहर मेरे पास सुरक्षित रहेगी। ये कहकर वो खिलखिलाकर हंस पड़े। मैंने सोमेश की तरफ दयनीय दृष्टि से देखा, पर उन्होंने कहा, श्वेता, मैं 10-15 मिनट में लौट आऊंगा, तब तक तुम सर से बातें करो। अकेले घर में एक पुरुष जिसकी दृष्टि में पहचान चुकी थी, उसके संग अकेले रहने के विचार मात्र से मैं कांप उठी। पर और कोई चारा भी तो ना था। सोमेश के पलटते ही मिस्टर गोयल मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने एक बार कामुकता भरी दृष्टि से मेरी तरफ निहारते हुए कहा, श्वेता, तुम वास्तव में अद्वितीय सुंदरी हो, मुझे भी एक बार सेवा करने का मौका दो। मैं सोमेश की पदोन्नति बहुत जल्दी कर दूंगा, बस तुम्हारी कृपा दृष्टि चाहिए। मैंने तिल मिलाकर कहा, गोयल साहब, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। वो गिरगिट के समान रंग बदलकर बोले, श्वेता जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था। पर उसकी आंखों में प्रतिशोध की जलती अग्नि मैंने देख ली थी। मुझे लगा ये मेरा अनिष्ट करके ही चैन लेगा। मेरे पति सोमेश कुछ जल्दी ही लौट आए और बोले, सर, जावेरी साहब तो मिले नहीं, इसी कारण मैं पत्र लौटा लाया हूँ। गोयल साहब हंसकर सोमेश से बोले, अरे भाई सोमेश, मैं श्वेता जी से जरा मजाक कर रहा था, पर वो तो सच समझ बैठी, देखिए कैसा मुंह फुला लिया है। मैंने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मैं नाराज कहाँ हूँ, इनका व्यवहार तो मेरे प्रति बड़ा शालीन और स्नेहपूर्ण रहा। तुम्हें आने में कुछ देर हो गई, इसी से मैं अनमनी हूँ। हम दोनों ने मिस्टर गोयल का बहुत धन्यवाद किया। घर लौटने पर मैंने सोमेश को सारा हाल सुनाकर कहा, सोमेश, गोयल की वो प्रतिशोध से भरी आंखें अब तक मेरा पीछा कर रही हैं। वो कुचला हुआ सांप है, कब मौका देखकर डस ले कुछ कहा नहीं जा सकता। सोमेश मुझे दिलासा देते हुए बोला, श्वेता, ये तुम्हारा भ्रम भी तो हो सकता है, गोयल इतनी नीचता नहीं करेगा। मिस्टर गोयल का व्यवहार हमारे प्रति अब भी सहृदयतापूर्ण है। कुछ दिनों तक हमने इंतजार किया कि शायद गोयल कुछ गड़बड़ करेगा, पर सब सामान्य रहा। अतः हम आश्वस्त हो गए कि गोयल भी सब कुछ भूल गया होगा, पर हम गलती पर थे। शेर मौका देखकर ही झपट्टा मारता है। होली का दिन पास आ रहा था। मैंने तरह तरह के पकवान बनाए थे ताकि होली के दिन सभी खाकर खुश हो जाएं। एक तरफ स्त्रियों की टोली थी तो दूसरी तरफ पुरुषों की। मेरी सहेलियों के संग श्रीमती गोयल भी होली खेलने निकली थी। वो एक स्थूल काय तथा कुरूप महिला थी, इसी कारण शायद मिस्टर गोयल उन्हें लेकर कहीं ज्यादा निकलते नहीं थे। मुझे मेरी सहेलियों ने गुलाल तथा अबीर से लाल कर दिया था। एक सहेली ने चुटकी लेते हुए कहा, हाय श्वेता, तू तो अब और भी सुंदर लग रही है, तुझे देखकर भगा ले जाने का मन होता है, काश मैं पुरुष होती तो तुझे छोड़ती नहीं, क्या रूप पाया है। मैंने शर्माकर कहा, झूठी चापलूसी क्यों कर रही है, क्या कुछ काम करवाना है। उसने हंसकर कहा, हाँ काम ही समझ लो। मैंने कहा, अच्छा बोल, क्या काम करवाना है। वो बोली, बस थोड़ी देर रुक जा, मैं तेरे इस अनिंद सौंदर्य को निहारना चाहती हूँ। मैंने उसे धकेल दिया, तू बड़ी शैतान होती जा रही है। इतने में श्रीमती गोयल कुछ स्त्रियों के संग मेरे पास आई और बोली, श्वेता, ये स्पेशल अबीर गुलाल तुम्हारे लिए गोयल साहब लाए हैं, तुम्हारी पहली होली है ना, ये अबीर गुलाल की महक भी बड़ी प्यारी है, अब तो रूप के संग संग तुम महकने भी लगोगी। ये कहकर उन्होंने ढेरों गुलाल मेरे सिर तथा मुंह पर डाल दिया। मेरे सिर में तथा मुंह पर इतना अबीर तथा गुलाल भर गया कि मैं परेशान हो गई। मुंह का गुलाल वगैरह मैंने अच्छी तरह पोंछ लिया था, पर सोचा सिर में पड़ा गुलाल थोड़ी देर बाद जब स्नान करूंगी तब साफ करूंगी। इसी बीच मिस्टर गोयल भी आ गए। उन्होंने मुझे होली की बधाई दी, फिर जिस व्यंग्य भाव से वो मुस्कुराए उसे देखकर मैं सिहर उठी। उन आंखों की भाषा तो मैं बाद में समझी जब वो भयंकर कांड हो गया। सबके चले जाने के बाद मैंने सोमेश से कहा, मैं स्नान पहले करूंगी क्योंकि मेरे सिर पर बहुत खुजली हो रही है, तुम बाद में स्नान करना। मैं गुनगुनाती हुई स्नान गृह में घुसी। आज सभी के मुंह से अपने रूप की प्रशंसा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सोमेश को भी कम गर्व नहीं था। मैंने अच्छी तरह से मुंह धोया, फिर जैसे ही मैंने ढेर सा पानी सिर में डाला मैं दर्द से चीख उठी। मैंने चीखते हुए दरवाजा खोल दिया। दर्द से चीखते चीखते मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैंने अपने को अस्पताल में पाया। मेरे चारों तरफ डॉक्टर तथा नर्सें खड़ी थीं। मैंने कराहते हुए डॉक्टर से कहा, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे तेज नींद की दवा दी। उस भयंकर दर्द के मारे मैं छटपटाती रही। तब डॉक्टर ने मुझे पैथोजन का इंजेक्शन लगाया। सोमेश ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है, जो दर्द कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर ने कहा, किसी ने अबीर तथा गुलाल में तेजाब मिलाकर इनके सिर में डाल दिया है। पानी डालते ही तेजाब ने अपना असर दिखाया है, जिससे इनके सिर की चमड़ी जल गई है। अभी तो आपने कुछ देखा नहीं है, जब ये होश में आकर अपना सिर देखेंगी तो शायद ये सदमा मुश्किल से बर्दाश्त कर पाए। ये कहकर उसने मेरे सिर पर से पट्टी हटा दी। सोमेश के मुंह से एक चीख निकली। मेरे सिर के अधिकांश बाल निकल गए थे। मैं एकदम गंजी हो गई थी। सिर की चमड़ी बुरी तरह झुलस गई थी। सोमेश की आंखों में आंसू आ गए। वे बोले, डॉक्टर, मेरी पत्नी अपनी कुरूपता बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बताइए मैं क्या करूं। डॉक्टर बोले, फिलहाल तो हम दवा लगाकर इनके सिर पर काला कपड़ा लपेट देते हैं। लोग पूछें तो यही कहिएगा कि इनके सिर में चोट लग गई है, इसी कारण दवा लगाकर बैंडेज बांधा है। शुरू में अपनी पत्नी से भी आप यही कहिएगा, धीरे धीरे उसे वास्तविक स्थिति से अवगत करवा दीजिएगा। बेहोशी टूटने पर मैंने अपने सिर पर कपड़ा लिपटा हुआ महसूस किया। पूछने पर सोमेश ने यही कहा कि तुम्हारे सिर पर कुछ जख्म हो गए हैं, इसी कारण दवा लगाकर पट्टी बांधी गई है। डॉक्टर से पूछकर ही कुछ दिनों बाद ये पट्टी खुल जाएगी। हफ्ते भर बाद मैं घर आ गई। सभी स्त्रियां मेरा हाल पूछने आईं। मिस्टर गोयल भी अपनी पत्नी के संग आए। मिस्टर गोयल के मुख पर विजय की मुस्कान खिल रही थी। उनकी आंखें मानो कह रही थी, देख लिया मुझे ठुकराने का परिणाम। इसी बीच सोमेश ने दूसरी जगह नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी थी। जल्दी ही नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं था। महीने भर में जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गई तो सोमेश ने ये राज मुझ पर खोल दिया। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, पर अब हो भी क्या सकता था। मैं डॉक्टर से मिली। उसने आश्वासन दिया कि साल भर में आपके बाल जरूर रुक जाएंगे। आपका मुंह भी खराब हो गया होता, पर भाग्य से आप अपने मुंह पर लगे गुलाल तथा अबीर पोछती रहीं, इस कारण उस पर असर नहीं हो पाया। ये तो भगवान का शुक्र है कि आपकी शक्ल खराब होने से बच गई। आप बालों की चिंता मत कीजिए, वे जरूर बढ़ जाएंगे, पर थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। 2 साल हमने वहां कैसे काटे हम ही जानते हैं। फिर यहां सोमेश की नौकरी मिलते ही हम भाग खड़े हुए। तुमने देखा है मेरे बाल कटे हुए हैं। ये फैशन के कारण नहीं है, बल्कि अभी बाल उतने बढ़े नहीं हैं। मेरे बाल तो कमर से भी नीचे तक तथा घने थे। जब बाल धोती तो सोमेश प्यार से कहते थे, श्वेता, बाल खोलकर तो तुम बहुत प्यारी लगती हो। ऐसा लगता है जैसे बादलों के बीच चांद निकल आया हो। उन्हें मेरे बालों से बेहद प्रेम था, पर अब तो कुछ नहीं रहा। उस भयंकर पीड़ा को मैं आज तक भूल नहीं पाई हूँ। इसीलिए उस दिन से मैं होली के दिन कमरा बंद करके बैठती हूँ। अबीर तथा गुलाल को देखते ही पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं। कोशिश करने पर भी मैं इस पुरानी घटना को भुला नहीं पाई हूँ। मुझे लगता है मिस्टर गोयल ने गुलाल में तेजाब जैसा कोई पदार्थ डालकर अपनी पत्नी को लगा दिया हो। मुझको लगता है कि मिस्टर गोयल ने गुलाल में तेजाब जैसा कोई पदार्थ डालकर अपनी पत्नी को दिया होगा, ये कहकर कि ये स्पेशल गुलाल है, बहुत अच्छा भी है, इसे केवल श्वेता पर ही डालना, उसके मुंह तथा बालों को इस गुलाल से अच्छी तरह रंग देना। मुंह तो इसलिए बच गया कि मैं बराबर साड़ी से उसे पोछती रही, इसी कारण केवल जलन ही रही, पर सिर पर पड़े गुलाल तथा अबीर को मैं पोछ नहीं पाई, इसी कारण वहां तेजाब का गहरा असर हुआ। वो तो मेरा मुंह भी जलाना चाहता था, पर भगवान ने मुझे बचा लिया। अब तुम ही सोचो अन्नू, क्या मैं वो दर्द और चीखें भूल सकती हूँ। यही कारण है कि अबीर देखकर मुझे हिस्टीरिया सा पड़ जाता है। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप है जो होली के दिन ही घटित होता है। क्या मैं भी कभी होली खेल सकूंगी? मन कहता है शायद कभी नहीं। अनुराधा ने कहा, श्वेता, तुम इतनी हतोत्साहित क्यों होती हो? समय अपने भुलावे की चादर किस पर नहीं डालता? अभी तुम्हारे घाव ताज़ा हैं, कुछ वर्षों में तुम इसे दिवा स्वप्न समझकर भूल जाओगी और एक स्वर्णिम होली तुम्हें गुदगुदा उठेगी। ये कहकर उसने प्यार से श्वेता को गले लगा लिया।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparadio.com की प्रस्तुति।